किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा नए पुराने लेखकों द्वारा लिखी दिल छूने वाली हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मेरे दोस्त और अजीम कहानीकार सरताज अली रिजवी की लिखी कहानी सोलो ट्रैवलर। वाचन है निधि बासु का।
क्या हुआ, मैं कुछ मदद करूं आपकी?
उसने स्कूटर को किक पर किक मारती स्निग्धा से पूछा।
पता नहीं क्यों बंद हो गई, ना तो सेल्फ से स्टार्ट हो रही है और ना ही किक से।
वो अपने माथे पर आए बालों को समेटती हुई बोली।
आप इधर आइए, मैं देखता हूँ।
कहते हुए उसने स्निग्धा के स्कूटर का हैंडल पकड़ लिया। स्निग्धा उसे जानती नहीं थी मगर पहचानती जरूर थी। वो भी उसी जिम में जाता था जहां स्निग्धा अपनी 42 साल की उम्र में खुद को फिट रखने के लिए रेगुलरली जाया करती थी। हालांकि उन दोनों की कभी ना तो बातचीत हुई और ना ही मुस्कुरा के एक दूसरे की ओर कभी देखा। स्निग्धा एक अच्छी होममेकर थी। उसके पति कॉलेज में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर थे। 16 साल का बेटा दूसरे शहर में स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ रहा था। वो अपनी जिंदगी में इस तरह किसी को लिफ्ट नहीं देती थी, मगर आज स्निग्धा को परेशानी में पड़ा देखकर उसने मदद ऑफर की तो स्निग्धा उसे ठुकरा ना सकी।
शायद प्लग में कुछ दिक्कत है, खोल के देखना पड़ेगा।
अब यहाँ कौन मैकेनिक है जो टूल लाएगा और प्लग खोल के देखेगा?
मैकेनिक की जरूरत कहाँ है? और रही बात टूल की, तो वो मेरी बाइक के मिनी टूल किट में मौजूद हैं।
उसने अपने टूल किट से टूल निकाला और प्लग खोल के स्निग्धा को दिखाते हुए बोला।
मेरा शक ठीक निकला, देखिए इसमें कार्बन जमा हुआ है। इसे खुरच कर साफ कर देंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक ऐसा ही हुआ। प्लग को साफ करके लगाते ही पहले सेल्फ में ही स्निग्धा की गाड़ी स्टार्ट हो गई।
ये लीजिए मैडम, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई।
थैंक यू सो मच सर, अगर आप ना होते तो मुझे ना जाने कितनी दूर तक गाड़ी खींचनी पड़ती।
पहली बात मैं सर नहीं सुयश हूँ, और दूसरी बात ये कि थैंक्स कहना हो तो मेरी फितरत को कहिए जो कि सोलो ट्रैवलर है और बाइकर भी।
ओके सुयश जी, मुझे बाइकर तो समझ में आ गया मगर ये सोलो ट्रैवलर मेरी समझ में नहीं आया।
मैं जी या साहब तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, सिर्फ सुयश हूँ। और सोलो ट्रैवलर वो लोग होते हैं जो अकेले ही निकल पड़ते हैं कुदरत के चेहरे के वो तमाम रंग देखने के लिए, जिसे सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ऑफिस में रहने वाले अक्सर नहीं देख पाते। हम वही रंग देखते हैं और दुनिया को वो रंग अपने व्लॉग्स और ब्लॉग्स में दिखाते हैं।
ओके, तो आप ब्लॉगर हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे स्निग्धा कहते हैं।
वेल स्निग्धा, ब्लॉगर मैं बाद में हूँ, सोलो ट्रैवलर पहले हूँ। जब मूड होता है बाइक उठाता हूँ, निकल जाता हूँ जिस दिशा में जी चाहता है। दूर दराज के इलाकों में बाइक में कोई दिक्कत होने पर मैकेनिक मिले ना मिले, इसलिए मिनी टूल किट हमेशा अपने साथ रखता हूँ।
और उसी की बदौलत आज मेरी स्कूटर भी ठीक कर दी आपने, जिसके लिए आपका हृदय तल से धन्यवाद।
आपका धन्यवाद तभी स्वीकार करूँगा जब आप मेरा ब्लॉग सुयश द अलोन सैलानी सब्सक्राइब करेंगी।
ये कहकर वो अपनी बाइक स्टार्ट करके निकल गया। घर आकर स्निग्धा अपने गीले बालों को तौलिए से लपेटे हुए गुनगुनाती हुई सोचने लगी कि सुयश का ब्लॉग सब्सक्राइब करे, मगर फिर उसने घड़ी देखी तो ख्याल आया कि आधे घंटे में अरुण आ जाएंगे लंच करने, इसलिए वो सब्सक्राइब करने का ख्याल छोड़कर किचन की तरफ लपकी। अरुण के लंच करके चले जाने के बाद स्निग्धा को सुयश के ब्लॉग की याद आई। उसने मोबाइल उठाया, सर्च किया तो पहली बार में ही उसका पेज सुयश द अलोन सैलानी खुल गया। वो ये देखकर हैरान रह गई कि जिम में आने वाला ये बॉडी बिल्डर टाइप लड़का कितना मशहूर है। लगभग 12 लाख सब्सक्राइबर उसे फॉलो करते थे। उसने उसके पेज पर कई तस्वीरें देखी। कुदरत को अलग ही नजरिए से कैमरे में कैद करके सबके साथ शेयर करने का उसका स्टाइल वाकई काबिले तारीफ था। एक तस्वीर पर स्निग्धा की नजर जम गई जिसमें एक छोटी सी चट्टान थी, चट्टान की परछाई थी, और सुयश था और नीचे कैप्शन में लिखा था, चट्टान, मैं और चट्टान का साया। एक तस्वीर में तीन, मगर तीनों अकेले। स्निग्धा काफी देर तक कोशिश करती रही मगर उस तस्वीर को नहीं भुला पा रही थी। वो लगातार सोच रही थी कि सुयश अकेला क्यों है। अगले दो तीन दिन वो स्निग्धा को जिम में नहीं दिखाई दिया। फिर एक दिन जब वो जिम से लौट रही थी तब वो उसे जिम की सीढ़ियां चढ़ता हुआ मिला।
हाय, कैसे हैं आप?
भला चंगा मस्त मलंग, आप बताएं आप कैसी हैं, और उससे पहले ये बताएं कि आपके स्कूटर की सेहत अब कैसी है?
मैं भी ठीक, और मेरी स्कूटर भी बढ़िया चल रही है। आप बताएं, उस दिन के बाद आज दिख रहे हैं, सब ठीक तो?
जी सब अच्छा ही है, एक दोस्त के पापा हॉस्पिटल में थे तो मैं भी सेवा में लगा रहा इसलिए नहीं आ पाया।
ओह, क्या हुआ उनको, अब कैसे हैं?
ज्यादा कुछ नहीं, शुगर बढ़ गई थी तो हॉस्पिटलाइज किया, मगर अब भले चंगे हैं।
दोनों में इससे ज्यादा बात नहीं हुई, वो जिम की तरफ बढ़ गया और वो अपने घर चली गई। रात में स्निग्धा को नींद नहीं आ रही थी, उसने मोबाइल उठाया और सुयश का ब्लॉग देखने लगी। सुयश को ऑनलाइन देख उसने मैसेज किया, मिस्टर सैलानी सोए नहीं? स्निग्धा ने टाइप किया,
काश मेरा सोना भी जल्दी हो पाता।
ऐसा क्यों?
बस यूं समझ लें कि भगवान ने किस्मत में नींद का कोटा कंजूसी से अलॉट किया।
ना, ऐसा नहीं कहते।
अगर चैट ही करने का मूड है तो ये है मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ मुझे ऑनलाइन देखकर अभी मेरे सब्सक्राइबर्स मैसेजेस की झड़ी लगा देंगे।
अब दोनों की चैटिंग शुरू हो गई। स्निग्धा उसके बारे में और जानना चाहती थी। उसे यूं लग रहा था जैसे सुयश की शक्ल में उसके सामने किसी गहराई से निकलती हुई कोई धुन हो जिसकी तह तक स्निग्धा पहुंचना चाहती थी, मगर अरुण के उठ जाने की वजह से वो सुयश को गुड नाइट का मैसेज भेजकर ऑफलाइन हो गई। अगले दिन रविवार होने के कारण जिम बंद था और अरुण की मौजूदगी में वो उससे चैट नहीं करना चाह रही थी। अगले दिन सुयश उसे जिम में नहीं दिखा तो उसकी नजरें उसे ढूंढने लगीं। नाकाम होकर उसने खुद से कहा,
क्या हो गया है तुमको स्निग्धा? तुम 42 साल की गृहस्थ औरत हो और वो 30 साल का लड़का है, उसके लिए इतना बेचैन होना ठीक नहीं।
मैं क्यों होने लगी बेचैन?
मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि इतना मशहूर होने के बाद भी ये लड़का अकेला क्यों है?
अपने दिमाग को विचारों की दो तरफा लड़ाई से बचाने के लिए वो सर झटक कर जिम से निकल गई। वो जिम से घर तो आ गई मगर सुयश के ख्यालों के पंजे शायद उसके दिलो दिमाग का पीछा कर रहे थे। उसने डेटा ऑन किया तो देखा सुयश कुछ देर पहले तक ऑनलाइन था।
सब ठीक तो? आज जिम नहीं आए?
इतना टाइप करके उसने सुयश को भेज दिया मगर शाम तक जवाब नहीं मिला तो उसने फोन करने की ठानी। उसने सुयश का नंबर डायल किया मगर बेल जाने से पहले ही काट दिया, और ऐसा उसने कई बार किया। आखिरकार उसने उसे फोन कर ही दिया।
हेलो स्निग्धा, कैसी हो?
उसे सुयश का इस तरह उसका नाम लेना थोड़ा अखरा मगर उसने अपने एहसास पर काबू पाते हुए कहा,
मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आज जिम नहीं आए?
जी आज वो बाइक साफ करते हुए स्लिप हो गया तो कोहनी में थोड़ी चोट आ गई, इसलिए नहीं आ पाया जिम।
अरे ऐसे कैसे, क्या हुआ? ज्यादा तो नहीं लगी ना, आप ठीक है ना?
अरे ऐसी कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं लगी, कल तक ठीक भी हो जाएगी।
थैंक गॉड, मगर लापरवाही अच्छी नहीं है। अपनी मम्मी या बीवी से मंगवा कर दूध हल्दी जरूर पी लीजिएगा।
दूध हल्दी पी लूंगा मगर ना बीवी है और ना माँ, अकेला ही हूँ तो किचन में जाकर खुद ही लेने पड़ेंगे।
तो क्या आप अकेले रहते हैं, फैमिली नहीं है आपकी?
स्निग्धा मासूमियत से पूछ बैठी।
सब बताऊंगा मैडम मगर फुर्सत से, फिलहाल मेरे दरवाजे खाना डिलीवर करने के लिए डिलीवरी बॉय आया है, पहले उससे निपट लूं।
इतना कहते हुए उसने फोन काट दिया। स्निग्धा फोन को हाथ में लेकर ठगी से बैठी रही। उसको इस तरह फोन काट देना बहुत बुरा लगा मगर फिर भी वो उसी के बारे में सोचे जा रही थी। उसने अपना रूटीन काम निपटाया मगर दिमाग और दिल सुयश की तरफ ही लगे थे। उसके जहन के घोड़ों ने शायद कसम खा रखी थी कि दौड़ेंगे तो सुयश की तरफ ही। रात में उसने सुयश को मैसेज किया, अब आपकी कोहनी की चोट कैसी है?
हल्दी वाले दूध की कृपा से दर्द बस अब उतना ही बचा है जितना आजकल के नेताओं में शर्म।
और इस जवाब को पढ़कर स्निग्धा के होठों पर मुस्कान दौड़ गई। शाम को शावर लेकर जब वो आईने के सामने आई तो खुद ही से कहने लगी, कौन कह सकता है स्निग्धा कि तुम 42 साल की हो,
25-26 से ज्यादा की नहीं लगती।
और तुम्हारे ये लंबे बाल किसी शायर का ख्वाब हो सकते हैं। अरुण को बस अपनी किताबों से मतलब है, वो पढ़ा के आते हैं और पढ़ने में मगन हो जाते हैं। अब वो कहाँ देखते हैं तुम्हारी तरफ उस तरह जिस तरह शादी के शुरुआती सालों में देखते थे। कितना बदल गया है सब कुछ, कितने लोग आए गए जिंदगी में, पर तुमने उनकी ओर देखा तक नहीं। पर अभी जो आया है ये सुयश, चाहे तुमसे छोटा हो मगर लगती तुम उससे भी छोटी हो। वैसे दोस्ती में उम्र कहाँ अड़े आती है। वो खुद को सुयश का दोस्त मान चुकी थी, अब वो उसके अकेलेपन में झांकना चाहती थी, मगर सुयश ने कोई खिड़की खुली ही नहीं छोड़ी थी जिससे उसके अंदर झांका जाए। अब उसे वो खिड़की खुलवानी थी। आज भी सुयश को जिम में ना पाकर उसने जिम से ही उसे फोन किया, हेलो मिस्टर सोलो ट्रैवलर, अब कैसे हैं?
अब तो बहुत आराम है, हल्दी वाला दूध वाकई असरदार निकला, कल से शायद जिम भी आने लगूं।
ओह थैंक गॉड, अच्छा लगा सुनके कि आप ठीक हो रहे हैं।
मगर मेरा ठीक होना आपको अच्छा लगा इसकी वजह?
ओहो यार सॉरी, मेरा मतलब सुयश, आपने मेरी मदद की थी, मेरे मददगार को राहत मिली इसलिए मुझे अच्छा लगा।
मगर तुम्हारी बात में तुम्हारा मुझे यार कहना अच्छा लगा।
मैं बड़ी हूँ आपसे।
तो क्या बड़ों में दोस्ती नहीं होती?
होती होगी, मुझे क्या, स्निग्धा ने तुनक कर कहा तो सुयश हंसने लगा। चैट और कॉल्स का सिलसिला बढ़ा और स्निग्धा को सुयश की जिंदगी में झांकने का मौका मिला, तब वो जान पाई कि सुयश की माँ उसके सौतेले पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया में है। सौतेले पिता चाहते थे कि सुयश उनका काम संभाले, मगर सुयश को कुदरत के हसीन नज़ारे भाते थे, उसके ब्लॉग और आर्टिकल पूरी दुनिया में छपते थे, यही उसकी मोटी आमदनी का जरिया भी था जिसने उसके शौक को भी पूरा किया और मशहूर भी बनाया। मगर ये नाम और दाम भी उसके उस खालीपन को नहीं भर पाए। शायद 3 सौतेले भाई बहनों ने उसके अकेलेपन को भरने की बजाय और बढ़ा दिया था। सुयश के बारे में जानने उसे समझने में अब मिनटों वाली कॉल घंटों वाली कॉल बन गई थी। स्निग्धा तेजी से सुयश की ओर खींचती जा रही थी, ये खिंचाव उसे बुलंदी की ओर ले जा रहा था या पाताल की ओर, इस बात से बेखबर वो बही चली जा रही थी। अब उनका रिश्ता दोस्ती की सरहदें लांघकर घुसपैठ कर रहा था उस इलाके में जिसे कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता। उस दिन दोनों बहुत देर से कैफे में बैठे हुए थे।
मुझे बहुत टाइम हो गया, अब मैं चलती हूँ,
ये कहकर जैसे ही स्निग्धा ने कॉफी के मग को मेज पर रखना चाहा, सुयश ने उसका हाथ पकड़ लिया।
अरे सुयश, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज।
क्या दिक्कत है यार?
प्लीज सुयश, हम दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त।
तो क्या दोस्ती में बेनिफिट्स नहीं लेते क्या? जो मुझे चाहिए मुझे दो, जो तुम चाहती हो मुझसे लो।
सुयश नो, मैं किसी और की हो चुकी हूँ, मेरे नाम के साथ किसी का नाम लगता है, वो मुझसे प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं मुझ पर।
अच्छा ये बताओ, जिसका नाम लगता है उसके साथ आखिरी बार कॉफी पीने कब गई? स्निग्धा, चांद और इश्क दोनों शुरुआत में बढ़ते हैं फिर एक जगह पे आके घटने लगते हैं, तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है, सुयश ने उसकी दुखती हुई रख पर हाथ रखते हुए कहा। स्निग्धा कुछ नहीं बोली, पांव पटकते हुए निकल गई।
सुयश ने कई कॉल किए मगर उसने फोन नहीं उठाया। वो घर आकर तकिए में मुंह छुपाए देर तक रोती रही, फिर खुद से ही बोली,
कभी थी तुम अरुण के लिए उसकी दुनिया, पर अब उसकी दुनिया उसकी टेबल, किताबें और राइटिंग पैड हो गई है। जब वो अपनी मर्जी का जी सकता है तो मैं क्यों नहीं।
अगले दो दिन तक न सुयश ने उसे फोन किया न ही उसने। फिर उसी ने अरुण के जाने के बाद सुयश को फोन किया तो मानो वो उसी के फोन के इंतजार में बैठा हो।
अजीब कश्मकश में फंसा दिया है तुमने मुझे सुयश, तुमने ऐसा क्यों किया।
कम ऑन स्निग्धा, तुम रोना बंद करो, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा। प्लीज जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
तुम मुझे 4 बजे ब्लू मून कैफे में मिलो।
स्निग्धा ना चाहते हुए भी एक ऐसे अंधे रास्ते की ओर चल पड़ी थी जहां से निकलने की कोई राह नहीं थी। उसकी गृहस्थी और परिवार उसके पैरों में बेड़ी डाले हुए थे मगर उन बेड़ियों की कड़ियां कमजोर होती लग रही थी।
यार क्या दिक्कत है तुम्हें उस तरह मेरे गले लगते हुए, तुम कहती थी ना कि तुमको मेरे अकेलेपन तक जाना है, तो सुनो ये अकेलापन मेरी रूह में है और रूह तक जाने में जिस्म का दरिया पार करना पड़ता है।
अगर कोई रिश्ता या दोस्ती निभाते हुए जिस्म करीब आ जाते हैं तो क्या बुरा है इसमें, इसमें शादीशुदा क्या और गैर शादीशुदा क्या, आजकल ये चलता है।
मेरा दोस्त अमन शादीशुदा है मगर कामना जो कि सिंगल है उसके साथ रिलेशन में है। उसकी दोस्त ऋतु मैरिड है मगर मानेंद्र के साथ है।
जाने कितने ही लोग हैं जो परिवार में हैं मगर अकेले हैं। और इस अकेलेपन को बांटते वक्त अगर बदन की सीमा लांघ भी ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा।
स्निग्धा कुछ नहीं बोली मगर सुयश की बातें उसके अंदर जमी बर्फ को धीरे धीरे पिघला रही थी। फिर अचानक ही सिसक कर वो सुयश के गले लग गई। और भी लोग हैं जो इस तरह के रिश्ते निभा रहे हैं, इस बात ने स्निग्धा के दिल का भारीपन कुछ कम किया। अब उसे भी सुयश की बातें ठीक लगने लगी। वो चाहता था कि स्निग्धा के साथ वक्त बिताए मगर छोटे शहर में इस तरह होना मुश्किल था, लिहाजा सोशल नेटवर्किंग का एक ग्रुप बनाया गया और तमाम उन लोगों को जोड़ा गया जो परिवार में रहते हुए भी कहीं और रिश्ते निभा रहे थे। लेडीज का ग्रुप भी बना और लड़कों का भी, और तय किया गया कि सभी लेडीज अपने घरों में ये कहेंगी कि हम लेडीज ग्रुप घूमने जा रहे हैं और निकल पड़ेंगी किसी बड़े शहर, जहां जेंट्स का ग्रुप पहले पहुंच के होटल वगैरह का बंदोबस्त करेगा और 4 दिन सब साथ होंगे। जो कुछ छोटे शहर में मुमकिन ना था बड़े शहर में होगा। सारा प्लान तैयार था और स्निग्धा भी, उसने अरुण को मना लिया था इस लेडीज पिकनिक पर अकेले जाने के लिए। जिस दिन जाना था उस दिन स्निग्धा सुबह से बार बार घड़ी देख रही थी, सूटकेस तैयार था, आखिर वो अब 4 दिन अपनी मर्जी से जो जीने जा रही थी। वो 4 दिन जो उसकी रेगिस्तान सी जिंदगी में बारिश से होने थे। तभी उसका फोन बजा, स्क्रीन पे अरुण का नाम देखकर वो चौंक पड़ी। जब मन में चोर हो तो दिल की धड़कनें बढ़ ही जाती हैं।
हेलो
क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, अरुण ने पूछा।
हाँ मैं ठीक हूँ।
मैंने कॉल इसलिए किया कि पूछ लूँ मेरे नाम प्रज्ञा प्रकाशन से कोई पार्सल आया क्या।
अभी तो नहीं आया।
आ जाएगा, जब भी आए तुम पार्सल खोल के उसमें से कॉपीराइट सर्टिफिकेट निकाल कर उसकी फोटो मुझे भेज देना।
ठीक है, जैसे ही आता है मैं भेजती हूँ,
जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहकर स्निग्धा किचन में गई रास्ते के लिए पकवान बनाने। पकवान बनाते बनाते बीच में एक बार बेटे से भी फोन पर बात कर ली। अचानक ही डोरबेल बजी और उसने दरवाजा खोला तो डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर खड़ा था। पार्सल खोलकर देखा, एक लिफाफे में कॉपीराइट सर्टिफिकेट था। उसने अरुण को उसकी फोटो भेज दी मगर खुले हुए पार्सल ने उसकी नजरें खींच ली। उस पार्सल में एक ही तरह की कई किताबें थीं। उसने एक किताब उठाई तो देखा, शीर्षक था प से पत्रकारिता। लेखक की जगह अरुण का नाम देखकर उसकी आंखें खुशी और हैरत से फैल गईं। काफी देर तक स्निग्धा किताब को यूं ही निहारती रही। फिर किताब खोली तो पहले पेज पर समर्पण में अपना फोटो देखकर हैरान रह गई। उसने पढ़ना शुरू किया। प से पत्रकारिता समर्पित है मेरी स्निग्धा को, जिसके समर्पण, वफादारी और प्यार की कस्में खाई जा सकती हैं, जिसके बिना ये अरुण पूरी किताब तो क्या एक शब्द तक नहीं लिख सकता। स्निग्धा की आंखें बरसाती नदी हो रही थीं। वो खुद से बोले जा रही थी,
अरुण इतनी मेहनत इस किताब के लिए कर रहे थे और ये किताब मुझे समर्पित कर दी, और मैं ये समझती रही कि प्यार और चांद बढ़ नहीं पाते तो घटने लगते हैं, जबकि अरुण का प्यार घट नहीं रहा था बल्कि दोगुना होकर उसका मान बढ़ा रहा था।
काफी देर तक वो उसी हाल में रही। फिर उसने कॉलबेल की आवाज सुनी तो मुंह धोकर दरवाजा खोलने चली गई। देखा तो बाहर अरुण थे, उनके हाथों में कई बैग्स थे जिनमें खाने पीने की चीजें थीं, जो शायद उन्होंने इसलिए ली थीं कि स्निग्धा उनको अपने साथ ले जा सके।
अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, मैं तो तुमको ड्रॉप करने के लिए कॉलेज से जल्दी आया हूं।
नहीं अरुण, अब मुझे नहीं जाना।
पर क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुम तो अपनी इस ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड थी, अब ऐन मौके पे क्या हो गया?
मुझे इस ट्रिप से ज्यादा एक्साइटेड करने वाली चीज मिल गई है अरुण।
वो क्या?
ये।
कहते हुए स्निग्धा ने अरुण की किताब प से पत्रकारिता उसके सामने कर दी। शाम को अरुण का दोस्त, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता था, आया तो स्निग्धा दोनों को चाय नाश्ता देकर अपने कमरे में चली आई और लैपटॉप ऑन कर दिया। शायद सुयश द अलोन सैलानी को अनसब्सक्राइब और अनफॉलो करने के लिए। आप सुन रहे थे सरताज अली रिजवी की लिखी कहानी सोलो ट्रैवलर। वाचन था निधि बासु का। आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो करना ना भूलें।